ओम शांति। आज पढ़ेंगे अमृत वेला के भिन्न भिन्न रूप से माया के वार तथा उनसे पार होने की विधि। जैसा अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सभी बच्चे पहले नंबर मिलने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई का नंबर लाइन क्लियर होने के कारण जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। कोई कोई नंबर मिलाते बाप से हैं, लेकिन बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। माया ऐसे इंटरफेयर करती है जो चाहते भी कनेक्शन जोड़ नहीं सकती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं। अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। दूसरा है, ऐसी अलबेली आत्माओं के दृश्य बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। थोड़े समय के बीच उनके अनेक रूप दिखाई देते हैं। कभी बाप को स्नेह से सहयोग देने की अर्जी डालते हैं, कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते हैं। कभी जोश में आकर माया से परेशान होकर सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करते हैं। कभी तलवार चलाते हैं, कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन पोछ के साथ आज्ञाकारी, वफादार, निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश चाहिए तथा यथार्थ निशाने पर पहुंचेंगे। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे भी होते हैं जो ईश्वर प्राप्ति और माया की प्राप्ति के अंतर को नहीं जानते। निंद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्प काल की निंद्रा द्वारा रेस्ट के प्राप्त सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे दृश्य दिखाते हैं। अमृत वेले ड्रामा अनुसार बच्चों को बाप से मिलने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो वॉइसलेस है, क्योंकि जो वॉइसलेस आत्मा ही वायरलेस का कनेक्शन जोड़ सकती है। वे संकल्प करते ही मिलन मना लेते हैं। अमृत वेले जब याद में सब जाते हैं, लेकिन उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आता है। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूजियम। भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योगी दिखाए हुए हैं, तो अमृत वेले की सीन भी ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते हैं तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते हैं और उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठे हैं वह उनसे नहीं होता है। जैसे हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे, कोई कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरे सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते हैं तो दूसरी टांग पर गिर जाते हैं। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, लेकिन होता नहीं। यह भी सीन देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वहाँ हट करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ फिर विशेष सैया पर सोते हैं। यहाँ का उस समय का पोज वंडरफुल होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। अमृत वेला हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का अगर मुख्य आधार कहा जाए तो अमृत वेला ही है। क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत अगर अच्छी है तो पूरे दिन ही अच्छा रहेगा। अगर दिन की शुरुआत ही बाबा की श्रीमत को उल्लंघन करके करते हैं, अमृत वेले मिस करते हैं, तो शायद पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं भी जाएगा। क्योंकि ये किसी मनुष्य की दिया हुआ श्रीमत नहीं है। स्वयं भगवान ने इस धरा पर आकर जो नियम मर्यादाएं हमें बनाए हुए हैं उस पर चलने के लिए हमें शक्ति भी देते हैं। केवल वो हमें ज्ञान नहीं देते हैं, ज्ञान देने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन वो हमें शक्ति देते हैं ताकि हम उसके बताए हुए श्रीमत पर चल सके। लेकिन उसके लिए हमें जो जो आज्ञा देते हैं उनकी ऊपर चलना बहुत जरूरी है, तब जाके उनकी शक्तियों को हम अपने अंदर समा सकते हैं, ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सभी बच्चे पहले नंबर मिलने का पुरुषार्थ करते हैं या कनेक्शन जोड़ने का। वैसे देखा भी जाए तो जीवन में है ना सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है, ऐसे सफलता का आधार भी कहा जाता है कि जो पहले उठते हैं है ना सूर्य उदय से पहले, उसका सबसे मुख्य आधार ये है कि वो सूर्य उदय से पहले उठना। अगर जीवन में सफल होना है कोई भी क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लौकिक जॉब हो, क्योंकि उस समय सब ज्यादातर विश्व के मनुष्य आत्माएं सोए रहते हैं, उस समय ज्यादा संकल्पों का टकराव नहीं होता, उस समय हमारी लाइन क्लियर होने के कारण हमारा मन भी शांत होता है और मन शांत होने के कारण हमारे मन में बहुत श्रेष्ठ और अच्छे विचारों का निर्माण होता है, जिससे हम सही डिसीजन और लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं मिलन मनाने का पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन चाह के भी मिलन नहीं मना सकते। उसका कारण ही बाबा ने कहा कि दिनचर्या में अलबेलापन करते हैं और अलबेलापन होने के कारण माया भी उसे विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है। तो ऐसे कौन कौन से हम बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं जिससे माया भी हमें बाबा से वरदान लेने के लिए वंचित करती है। एक एक बता। हाँ अमृत वेले नहीं उठना और देरी से सोते हैं। और विठल भाई हाँ रात को किसी से बात करते रहे। एक भाई बोल रहा था कि एक भाई तो पूरा व्हाट्सएप में लगा रहता है रात को 12 बजे तक, तो बोला कैसे पता चलता है, तो जब वो दूसरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनका पता चलता है। तो देखो अभी ब्राह्मण आत्मा उनको पता है कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि हम सवेरे जल्दी उठे। तो ज्ञान तो हर आत्मा को है, ऐसे की नहीं है उनको, फिर भी कैसे वो संस्कार के अधीन है अपने। तो हम श्रीमत का उल्लंघन करते इस कारण अमृत वेला भी हमारा वही व्हाट्सएप की बात, क्योंकि बात में उतना मजा नहीं आता है ना, व्हाट्सएप में मजा आता है क्योंकि व्हाट्सएप में हम दिल की बात कर सकते हैं और सामने बोल के हम नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल उसको ही पता हो हमारी बातें, इसलिए हम मैसेज करते हैं उनको। हाँ बोल हिम्मत होती है इसलिए उसको मैसेज करके हम करते हैं कि कब मैसेज आएगा। हाँ तो बाबा भी कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे श्रीमत है जो बाबा के हम दिनचर्या में उल्लंघन करते, चाहे जो बाबा हमें सेवा दिए उसको अच्छा से ना करना, ये भी एक पनिशमेंट मिलता है। किसी को दुख देते हैं, किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, दुख लेना ये सबसे डेंजर है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। दुख देना है तो व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है लेकिन दुख लेना कैसे, इसके ऊपर पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे दिनचर्या में बहुत सारे, जैसे कि हम भोजन में बात नहीं करना, बाबा कितनी बार कहते हैं मुरली में, तो सूरज भाई जी अपने अनुभव सुना रहे थे, क्लास में बता रहे थे कि एक भाई आया था मधुबन पहली बार बाबा से मिलने, तो हम जब घर में थे तो भोजन बिल्कुल शांत में करते थे, लेकिन मधुबन में आके देखे यहाँ तो सबके सब बात करते हैं, तो फिर उसने भी बात करना शुरू कर दिया। नहीं उसने जो देखा भाई ने, यहाँ तो सबके सब बात करते हैं लेकिन हम तो हाँ, तो बोला कि वहां तो हम मौन में भोजन करते, यहाँ तो मधुबन में रहने वाले भी बात करते, ऐसा क्यों। तो फिर उसने जो अपनी साधना से है ना मौन में भोजन करने का पुरुषार्थ जो अपना है वो भी तोड़ दिया। तो देखो मधुबन में आके हम कैसे किसी के अवगुण ग्रहण कर लेते हैं, जबकि मधुबन में आते ही हम अपनी कमी कमजोरी को छोड़ने के लिए। तो देखो इंसान की जो मनोवृत्ति कैसे बदल जाती है, संगठन इंसान को ऊपर भी उठा सकता है तो संगठन इंसान को नीचे भी गिरा सकता है, क्योंकि संगठन में रहने के कारण हम एक दूसरे की कमी कमजोरी और अच्छाई अभी देखते, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा ज्ञान, हमारी धारणा या बाबा के ज्ञान को हम किस तरह से समझे हैं, उस अनुसार से हमारे दृष्टिकोण उसके प्रति बनती है। बाबा तो कहते कोई संपूर्ण बना नहीं है, लेकिन उस आत्मा के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी तो है, वो तो हमें दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम ऊपर के लेयर को देखते हैं जो फ्रंट में दिखाई देता है और उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। चलो कुछ कारण से उसको शायद वो कोई जरूरी काम होगा इसलिए भोजन नहीं मिला, इसलिए बात की, फिर वो दिन भर नहीं मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हम उतनी बुद्धि नहीं चलाते, बस हम उसको फ्रंट को ही देखते हैं कि वो भोजन में बात नहीं करना चाहिए, बाबा ने बोला है तो वो भोजन में बात कर रहा है, मतलब श्रीमत का उल्लंघन कर। लेकिन वो भाई या बहन मिलेगा ही नहीं दिन भर उसको, लेकिन उनसे जरूरी है बात करना, तो कहीं सोचते फोन में भी तो बात कर, कुछ बात होती जो फोन में नहीं किया जा, हमने सामने ही करना पड़ता, तो हम उसको तो कुछ काम होता है उसको सामने ही करना पड़ता है, क्योंकि हम बात नहीं करते, क्योंकि कुछ चीज बताता हमें समझ नहीं आता तो हमें बताता है ऐसा ऐसे करना चाहिए, हाँ कुछ भी बात होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम उसको थोड़ा सा विचार सागर मंथन करें, उसको रिफाइन करें, कि उसके में से अवगुणों में से गुण निकालने का प्रयास करें। फिर बाबा कहते हैं माया भी इंटरफेयर करती है, और माया भी, बाबा कहते हैं माया सबसे अच्छी बच्ची है मेरी, वो पूरा श्रीमत का पालन करती है, क्योंकि तुमने श्रीमत का उल्लंघन किया इसलिए अब बाबा के बाबा से वरदान लेने के लिए अब वंचित हो जाओ। तो वंचित होते हैं तो देखो हम जन्म जन्म के भाग्य को भी लकीर लगा देते हैं, क्योंकि अमृत वेला माना अमृत पान करने का समय, और जिस समय अमृत मिल रहा हो उस समय व्यक्ति नींद कर रहा हो, सो रहा हो, उसकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि उस समय उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे दिनों दिन क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ को माँ का दूध ही दिया जाता है बचपन 6 मास तक, अगर उसे दूध ना मिले जाए तो बच्चे कमजोर होता जाएगा। वैसे बाबा कहते हैं कमी कमजोरी तो बहुत होती है, लेकिन विशेषता को देखकर ही बाबा हर बच्चे को चुने होते हैं, लेकिन विशेषता तो है, लेकिन बाबा की श्रीमत भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, और बाबा की श्रीमत को उल्लंघन करने के कारण ही हम आत्मा कमजोर होते जाते हैं, और फिर हम कहते थे पहले तो बहुत अच्छे थे, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे थे, तो छोटे छोटे श्रीमत को हम उल्लंघन करते जाते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है, एक गुरु एक शिष्य था, तो जो गुरु था वो गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गया, और वो गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गया तो गुरु से शिक्षा ले रहा था, तो वह सभी प्रकार की शिक्षा ले चुका था, जो भी गुरु के पास विद्या थी, मंत्र था, वो सब उसने दे दिया, और उसको देने पर जो भी सिद्धियां थी, ऐसे नहीं कि गुरु और चेले में कोई अंतर हो, दोनों में समानता आ गई थी, और वो भी जो भी गुरु कहता था उनकी हर आज्ञा का पालन करता था, पालन करता था, एकदम आज्ञाकारी शिष्य बन चुका था, इसलिए सारी सिद्धियां भी उसको प्राप्त हो चुकी थी, और वो बीच बीच में प्रयोग भी करने लगा था। तो जैसे गुरुजी मंत्र का प्रयोग करते तो भी वैसे, और जो सिद्धियां मिलनी चाहिए वो भी वो सिद्धियां मिलने शुरू हो जाती। फिर एक दिन गुरुजी ने उसको कहा कि शिष्य जाओ, कि एक बॉक्स दिया और बॉक्स में उसको कहा कि दूसरे दूसरे गुरुकुल में जो वहां गुरु रहते उनको दे के आना, लेकिन उनको बताया गया कि ये बॉक्स आपको खोल के नहीं देखना है। तो वो ले गया और गुरु की आज्ञा मानकर उस बॉक्स को ले भी गया, और जाते जाते वो बीच में बहुत सारे संकल्प उनके मन में आने लगे, गुरु ने तो मुझे सभी सिद्धियां दी हैं और जो भी सिद्धियां गुरु के पास वो भी मेरे पास है, लेकिन गुरु ने एक ही शब्द क्यों कहा कि इस बॉक्स को खोल के मत देखना, केवल एक ही शब्द। तो उनके मन में बार बार विचार आता है कि ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो खोल के देखने के लिए मना किया। तो वो बार बार अपने मन को समझाता है कि नहीं, गुरु की आज्ञा है, गुरु ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, तो ऐसे, लेकिन मन उनका मानता नहीं, वो कहते एक बार देखने में जाता क्या है अपना। तो आखिरकार वो जाता रहता है, और सफर इतना दूर होता है कि उनके मन पे उसका कंट्रोल नहीं होता, आखिरकार वो जंगल में जाके खोल के देख ही लेता कि आखिर है क्या इस बॉक्स में। तो उसमें था एक चूहा। तो जैसे उसने खोला तो चूहा तो भाग गया, वो बिल में चला गया। तो उसने सोचने लगा कि अब तो चूहा भाग गया, अब क्या किया जाए, गुरु ने बार बार मुझे समझाया था कि बॉक्स खोल के मत देखना, लेकिन फिर भी उसने देख लिया और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उसे बहुत आत्मग्लानी होती है अपने आप में कि मैंने गुरु की पूरी शिक्षाएं की, जीवन भर उसकी आज्ञाओं पर चला, लेकिन एक आज्ञा को मैंने उल्लंघन कर दिया, बस बॉक्स ही तो खोल के नहीं देखना था इसमें। तो फिर वह बॉक्स को ले जाते, फिर सोचते बॉक्स में क्या है, केवल तो मुझे ही पता है और गुरु जी को पता है, सामने वाले गुरुजी को थोड़ी पता है इसमें क्या है। तो फिर वह ले जाता है फिर वो गुरु जी के पास ले जाता और गुरु जी को पूछता है? नहीं, वो चूहा ही था ना, क्योंकि वो भी थोड़ा आज्ञाकारी था ना, इसीलिए तो वो तो ले गया उस गुरु जी के पास और कहीं वो बॉक्स उठा के दे दिया। जब जैसे उस बॉक्स को ओपन किया, देखा खोल के, तो बोला इसमें का चूहा कहाँ है। तो उसको तो आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता है कि इसमें चूहा है। तो उसने कहा कि बात चूहे की नहीं है, बात है आज्ञा की, कि तुमने गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन किया और गुरु जी ने आपको बार बार ही बताया था कि इस बॉक्स को खोल के मत देखना और वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, तुम्हारा मन की परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हारे मन पर तुम्हारा कितना कंट्रोल है। तो बाबा कहते हैं जो आलस तलबेलापन हमारे जीवन में आता है वो हमारे पहले मन में उठता है कि ये करूं कि नहीं करूं। जैसे अमृत वेला भी ठंडी हो रहा है तो सोचते हैं कि 5 मिनट सो लेते हैं तो 5 का सीधा 5 बजता है। तो बाबा कहते हैं तो हर दिन उठते हैं, लेकिन ठंडी जैसे जैसे आराम होता है हमारे जीवन में, आलस्य के भी आराम होना शुरू होता है। तो जैसे 5 मिनट का 5 बजते तो फिर सोचते 5 तो बज ही गए, अब 6 बजे तक सोते हैं। अब 6 बज गया तो मुरली तो 7 बजे शुरू होती है, आधा घंटा और सो लेते। फिर सोचते 7 बज गया, अब छोड़ो आज मुरली ही छोड़ो, एक दिन मुरली सुनने से क्या होता है, हर दिन तो ही सुनते हैं, वह बाद में पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप में पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं उल्लंघन करते जाते और हम कमजोर बनते जाते अंदर से, और कमजोर बनने के कारण हमारा मन, हमारा पुरुषार्थ का मार्ग जो हमने लक्ष्य तय किया होता है, उनसे हम भटकना शुरू होते हैं केवल एक छोटी सी गलती से। और फिर हम कहते हैं तो भाई बहन अच्छा पुरुषार्थी था, बहन बहुत अच्छा पुरुषार्थी था, इसको क्या हो गया। कहीं ना कहीं वो श्रीमत का उल्लंघन करता है, इसलिए उनके जीवन में जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति से वंचित हो जाता है। फिर कभी कहते थे इतने साल ज्ञान में चलता था भाई, अब क्या हो गया, है ना। तो आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी चीज भगवान तो मिला, लेकिन भगवान की बताई हुई श्रीमत पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता है तो हम 100% चलते हैं। जैसे कि मम्मा के जीवन में देखा जाए तो मम्मा को कहा गया, बाबा ने जब पार्टी आई थी तो पार्टी जा रहा था कि मम्मा इन बच्चों के लिए टोली बनानी है, जबकि बच्चे जा रहे हैं, मम्मा को भी पता है, बाबा को भी पता है, लेकिन मम्मा ने बिना कोई सोचे समझे बाबा की आज्ञा समझ कर उस टोली को बनाना शुरू किया और बच्चे चले भी गए, लेकिन बाबा की आज्ञा है और उस आज्ञा को उसने सिर माथे रखकर बनाना भी शुरू किया और टोली बन भी गया। तो पता चला कि ट्रेन ही लेट है। तो कितना फेथ था उनको, मम्मा को बाबा के ऊपर, कि जो कह रहा, कौन कह रहा है और कौन कहने के कारण उसको कितने आगे चलेगी, बाबा से भी आगे मम्मा चली गई, जबकि तन में तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आता था, फिर भी देखो कैसे आगे चलेगी, केवल एक आज्ञा का पालन करने से श्रीमत का। वैसे हमें बाबा कहते कि जब हम ऐसे फॉलो फादर बनेंगे जो बाबा कहता हमें करना है, कोई करे या ना करे, है ना। जब हम ज्ञान में भी आते तो किसी को देख कर थोड़ी आते हैं, अगर देख के भी आते हैं तो चलो अच्छा लगता है भाई, ये ज्ञान अच्छा है, ये जीवन अच्छा है, तो भी देख लेते हैं, लेकिन जो उनकी प्राप्ति होती है उसके आधार से हम आते हैं, है ना। चीज तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन जब तक उसकी प्राप्ति का हम अनुभव नहीं करते हैं तब तक हम उस लक्ष्य में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। तो बाबा कहते एक प्रकार से हम प्राप्ति का भी अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते ऐसी अलबेली आत्माओं के दृश्य बहुत आश्चर्यजनक होते हैं, थोड़े के समय के बीच अनेक रूप दिखाई देते हैं। बाबा के कैसे बच्चे भी भिन्न भिन्न रूप से होते हैं, है ना। आज ही ज्ञान की बातें करेंगे और कल उनके विरोध में भी बातें करते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, आज तो ब्राह्मण थे, जब ब्राह्मण जीवन से वो दूर चले जाते हैं तो कैसे उनके नेगेटिव, उनके विरोध में बात करना शुरू कर देते कि हम जानते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या, तो उन लोग कैसे होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में चलने की शक्ति नहीं होती और उसने बार बार बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करने के कारण वो भगवान के प्यार से वंचित हो जाते हैं। फिर हम उनके ऊपर ही कमेंट करने लगते कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे, वहाँ के लोग ऐसे, सब कुछ जानता हूँ मैं, ऐसा है वैसा है। तो बाबा भी कहते हैं क्यों होता है, क्योंकि जब तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उस समय तो सोचना चाहिए कि मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, और जब उनसे हम दूर होते जाते हैं तो उसी की। तो बाबा क्या कहते हैं, मेरा निंदक ठहर नहीं पाते। तो ये बाबा कहते हैं सबसे बड़े ग्लानि के पात्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले कई कई बच्ची स्नेह से सहयोग देने की अर्जी डालते हैं, कभी बाप को खुश करने के लिए बाप की महिमा और कर्तव्य को याद दिलाते, कभी जोश में आकर माया से परेशान होकर सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करते, कभी तलवार चलाते तो कभी सामने रखते, लेकिन जोश के कारण आज्ञा, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाप से स्नेह है इसलिए तो सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन अर्जी डालते हैं, फरियाद, यानी कि बाबा ये काम करा दो, ये हमारा कर दो, ये विघ्न समाप्त कर दो, ऐसा हो तो मैं अच्छा पुरुषार्थ कर सकता हूँ, इस भाई को हटा दो, इस बहन को हमारे मार्ग से हटा दो, ये भाई चला जाए तो अच्छा हो जाएगा, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अर्जी डालते हैं। तो अर्जी डालने के लिए क्या करते हैं बाबा को, जबकि बाबा कहते हैं वरदान का समय है, और वरदान के समय अगर हम अर्जी डालें तो क्या होगा, हम अपने भाग्य को ही वंचित कर देते हैं। फर्जी पुरुषार्थ, हाँ अर्जी पुरुषार्थ, यानी कई कई कहते हैं तो फर्जी ब्रह्मा कुमार बैच लगा लिया और व्हाइट ड्रेस पहन के घूम रहा है, और जीवन में देखे तो हर समय लोगों को परेशान करता रहता है, तो ऐसे भी कहते हैं ना, क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमें नहीं करना है, सर्वशक्ति है ना, क्योंकि जब हमारा बार बार योग टूटता है तो हम पूरा आक्रोश में आ जाते, पूरी शक्ति लगा देते कि देखते हैं कि आज योग कैसे नहीं लगता, और उस दिन अच्छा योग लगता है क्योंकि पूरे मूड बना के आते कि आज तो योग लगाना ही है, और पूरे तैयारी के साथ आते, तो माया भी उस दिन डर जाती। तो वो उमंग उत्साह हमारा हर दिन रहे, इसके लिए हमें कुछ नवीनता चाहिए, और नवीनता कैसे आएगी, जो बाबा की मुरली हमें रोज रोज सुनते हैं उसमें कुछ न कुछ हमें अपने लिए चुनना चाहिए, ताकि हम अपने पुरुषार्थ को एक नई दिशा दे सके, क्योंकि रोज जो चीज हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें नवीनता की जरूरत होती है। एक दिन अमृत वेले उठना है, एक सप्ताह उठना है, एक मास उठना है, एक साल, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते, लेकिन लाइफ टाइम करना है तो व्यक्ति सोचता है क्या करें, है ना। जहाँ लाइफ टाइम की बात आती है तो व्यक्ति को बहुत उसके लिए उमंग उत्साह अपने मन में जागृत करने की आवश्यकता है, और वो कहाँ से आएगा, हमारे अंदर से ही आएगा, क्योंकि जिस पथ को आपने चुना है तो उसमें सोच समझ के ही कदम रखा होगा, तब आपको पूरी एनर्जी उसमें लगानी होती है, और जब तक हम उसमें पूरी एनर्जी नहीं लगाते तो हमारी जो योग्यता है वो सामने नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं हमें तो रोज करना है, एक दिन की बात नहीं। तो बाबा ने कहा अल्पकाल की निंद्रा द्वारा रेस्ट के प्राप्त सुख को अतिंद्रिय सुख समझ लेते हैं ना। तो कई कई बच्चे सोते भी हैं अमृत वेले, तो कई लोग कहते हैं आज तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, तो बाबा कहते हैं वो रेस्ट अमृत वेले का जो नींद है सबसे पावरफुल और सबसे फ्रेश और सबसे बेस्ट होता है, इसलिए वो क्या होता है अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं आज अतिंद्रिय सुख का अनुभव, लेकिन जो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है उसको कुछ अलग होती, आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है अपने आप को, और कहीं ना कहीं वह देह से डिटेच अपने आप को अनुभव करती है, और डिटेच होने के कारण वह इस देह और देह की दुनिया से उपराम रहता है, और लेकिन सुख का अनुभव होता है, लेकिन बुद्धि तो दुनिया में ही घूमती रहती है, तो उसको कैसे हम कहें कि वो कि अतिंद्रिय सुख का अनुभव किया है। लेकिन फिर बाबा बदले हैं अमृत वाले याद में तो सब बैठते हैं, लेकिन समय की सीन को देखो तो बड़ा मजा आता है ना। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले का सीन बड़ा मजा आता है, क्योंकि बाबा कहते हैं सबके आश्चर्यजनक पोज होते, कोई किस स्थिति में बैठे होते, कोई किस स्थिति में, है ना। एक भाई जो बैठा था अमृत वेला, वो हर दिन अमृत वेला करते, लेकिन हर दिन उसका माने कि कई बार सोता रहता है ऐसे ऐसे, तो कई बार जो होता है वो अमृत वेले करने वाले वो बड़े विचित्र होते हैं, विचित्र ऐसे होते हैं कि ना तो उसका योग लगता है ना सामने बैठे जो होते हैं उनका भी योग लगने देता है, क्योंकि ऐसे वो सवेरे सवेरे कॉमेडी करना शुरू कर देता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे सी, फिर वो ऐसे देखेगा कोई देख तो नहीं रहा है, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे माने पूरा चलता ही रहता है, और पूरा उनका ध्यान वो सोचता है कि मैं योग कर रहा हूँ, तो फिर ना तो बाजू वालों का योग लगता है ना तो तुम्हें, कई लोगों का तो दिमाग भी खराब हो जाता है सवेरे से, तो योग करने आया कि सोने आया है, और बोल भी देते कोई समय जाके बेड में सोना चाहिए ना आपको, तो ऐसे भी करते। क्यों होता है, क्योंकि बाबा कहे ना श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं, वो कब से अमृत वेला कर रहा है हर दिन यही, तो नो रियलाइजेशन, न कोई अपने पुरुषार्थ के बारे में सोचा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हर दिन यही शेड्यूल रहता है। तो बाबा भी कहते हैं यहाँ पे कि भिन्न भिन्न पोज होते हैं, लेकिन उस पोज को हमें क्या करना है, नवीनता में परिवर्तन करना है, नहीं तो जब हम अमृत वेले अच्छा नहीं होता, जब देखते हैं हर लोग सर्दी सोते, अगर एक दिन अच्छा तो हमें सब उत्साह, आपका अमृत इलाज बहुत अच्छा था, आपने नींद नहीं किया, ऐसे कि कई लोग उत्साह भी बढ़ाते तो उनको उमंग भी आता है, अच्छा चलो आज तो अच्छा किया मैंने, तो उमंग शायद उसको आगे भी बढ़ा दे, तो इस तरह से हमें उमंग भी बढ़ाना हो जाए। हाँ उल्टा बोलते है कई लोग तो उनको भी बहुत बुरा लगता है, तो मैंने आज अच्छा नहीं किया, उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने आज अच्छा नहीं किया। तो बाबा भी देखो वही कि एक टांग पर खड़े होते, कोई कोई कैसा यहाँ होते, यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है जो कोई एक सेकंड अच्छा व्यतीत करते फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरे होते, दूसरी टांग गिर जाते हैं। सोचो आज का दिन कुछ जमा करे लेकिन होता नहीं, यह सीन देखो देखने की होती है। कई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट योग करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ पर विशेष सैया पर सोते हैं, यहाँ पर उस समय का पोज वंडरफुल होता है। बाबा कहते हैं सोते सोते भी योग करते हैं, एक ऐसा होता होगा नहीं, सोते सोते सो भी रहा योग भी कर रहा है, दोनों एक साथ बाबा कह रहे हैं। कोई कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट योग करते हैं, कांटों कांटे पर सोते हैं, फिर यहाँ विशेष सैया पर सोते हैं, यहाँ पर उस समय का पोज बहुत वंडरफुल होता है। तो बाबा भी कहते हैं तो ऐसे अलबेली आत्माएं होती है जो हमें जन्म जन्म के भाग्य से हमें वंचित कर देती है, इसलिए हमें हमेशा जागृत अलर्ट और उत्साह भरना चाहिए हमें हर दिन। अमृत वेला, अमृत वेला प्रभु मिलन का समय, ये ब्राह्मण जीवन में केवल एक ही बार मिलन होता है, जैसे नरेंद्र भाई, जैसे देवेंद्र भाई बोल रहे थे कि बाबा आए 8 तारीख को लेकिन आया ही नहीं, लेकिन उसका हमें कोई फीलिंग नहीं, लेकिन अब तो हमारा रोज अमृत वेले बाबा से मिलन होता है, क्योंकि वो आत्मा ने अपने आप को इतना ज्यादा है ना पुरुषार्थ से बाबा के प्यार में लवलीन कर लिया कि अब उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं कि बाबा आते हैं तो उनकी शक्ति, बाबा तो वरदान भी किस अमृत वेले ही देते हैं ना, क्योंकि वरदान लेने के लिए हमें तैयार भी होना चाहिए, कोई है ना वरद कुछ दे रहा है लेकिन हमारा पात्र ही ठीक नहीं है तो हम उस चीज को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए पात्र को योग्य भी बनाना जरूरी है। इसलिए ज्ञान मार्ग में हर ब्राह्मण बच्चों को जो भी बाबा की श्रीमत है, नियम मर्यादा सब पता होते हैं, लेकिन चलते हैं अपने मन मत अनुसार, क्योंकि ज्ञान तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को होती है, और जब उनको बताओ कि बाबा ने इस मुरली में ऐसा कहा, बाबा ने मुरली में उसका, तो फिर व्यक्ति बोलता कौन करता है आजकल, है ना ऐसी सीता माने जवाब देता है तो कौन करता है आजकल, तो व्यक्ति सामने वाला बोलने के लिए सोचता कि मैंने बोला ही क्यों इसको, ना बोलता तो ही अच्छा था। तो ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान दिया नहीं जा सकता, ना उसे कुछ बताया जा सकता, पुरुषार्थ करो ना साक्षी बन के देखना होता, क्योंकि ज्ञान देना ब्राह्मणों को खतरे से खाली नहीं रहता, आप एक बोलोगे तो 10 बोलने के लिए तैयार रहता था। हाँ क्योंकि उस हाँ बढ़ाया देख तो रहा हूँ तो आप भी तो इतने साल से कुछ तो परिवर्तन आया ही नहीं आपके अंदर, ऐसे बोलते थे। तो ज्ञान हर एक ब्राह्मण में, इसीलिए बाबा कहते पुरुषार्थ का मार्ग अकेला का मार्ग है, हमें करना है, कोई करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। अब एक बाप दादा जब आए थे तो दादी जानकी से पूछा कि बच्चे तैयार हो, तो दादी ने कहा जी बाबा, तो बाबा ने कहा अकेली जाओगी आप, तो निर्भय भाई ने क्या बोला, बाबा सब तैयार है, तो बाबा ने क्या किया, सबका ठेका लेके रखा है क्या है? तो दोनों तरफ माने कि बाबा क्या बोल सकता है कि इस समय कुछ भी नहीं, वास्तव में देखा जाए तो हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, हम केवल अपना पुरुषार्थ कर सकते। तो भगवान जब बोला कि तुमने ठेका लेके रखा है क्या, तो हमें क्या पड़ी है दूसरों की, कोई अमृत वेला उठता है नहीं उठता है, सोता है कि नहीं सोता है ना, मुरली सुनता है कि नहीं सुनता है, उनकी धारणाएं कैसी है, उनका दिनचर्या कैसे, किस लोगों से मिलता है किस लोगों से नहीं मिलता, कई लोग उनको शिक्षा देते इससे नहीं मिलना चाहिए उससे नहीं मिलना चाहिए, इनसे हमारा क्या फर्क पड़ता है, ये सब करने के लिए थोड़ी आए हम यहाँ, जो करने के लिए आए हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य उदय होता है तो केवल एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन वो कहे कि मैं ही सोया रहूं तो कैसे काम चलेगा, पूरा संसार अंधकार में हो जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते, तुम्हारी खुशी संसार की खुशी है, तुम्हारा उठना माने संसार को उठाना, क्योंकि तुम क्या हो, फाउंडेशन हो, है ना, इस कल्प वृक्ष के आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त हो। तो जब ऐसे बड़े बड़े टाइटल अगर हमें याद रहे तो हम सोएंगे नहीं, तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को जागृत रखना है सदैव। तो ये सब कब होता है कि जब हम बाबा की मुरली स्मृति रहती, हमें याद रहता है, तब जाके हम इस मार्ग पर चल सकते। नहीं तो कई ब्राह्मण आत्मा है जो भी बाबा के बच्चे बनने के बाद जो चले जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, कईयों के हम अनुभव सुनते हैं कि वो क्यों चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मा दूसरों को देखती है और दूसरों को देखने के कारण उसकी स्थिति नीचे गिरती है। कभी बाबा ने मुरली में नहीं कहा कि इस भाई को देखो, इस बहन को देखो, उनका पुरुषार्थ कैसा है, उनका पुरुषार्थ कैसा है। कई बार हम किसी के पुरुषार्थ की बहुत महिमा करते हैं, भाई बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, ये बहन बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, लेकिन बाबा कहते हैं किसी से प्रभावित भी नहीं होना, क्योंकि जो विशेषता है, जो गुण है, वो तो बाबा की दी हुई, उसकी खुद की तो नहीं, क्योंकि बाबा के बनने के बाद ही तो उसकी विशेषता आई है। और उनकी विशेषता के अगर अधीन हो गए तो क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। बाबा ने कहा किसी के पुरुषार्थ से या किसी की अच्छाई से प्रभावित होना माने बर्बाद होना। ये बाबा की महावा किसी ने कहीं इस पर कहा है, किसी के गुण से या पुरुषार्थ से प्रभावित होना माने बर्बाद होना। बर्बाद होना माने सब कुछ दिवालिया निकल जाना, जो हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा था उसमें हमारा गिरावट आ जाता है। इसलिए किसी से प्रभावित भी हमने वो अपने लिए करना, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो है ना, उनका ही जीवन अच्छा बने, बल्कि उससे हो सके तो हम सीखे कि वो कैसा पुरुषार्थ करता है, क्या क्या बातों पर अटेंशन रखता है, ताकि उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है। सब हम बातें उनसे सीख सकते, ना कि प्रभावित हो कि उनके आगे पीछे घूमे, नहीं तो ज्यादातर यही होता है, व्यक्ति उनके आगे पीछे घूमने लगता है और फिर वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है और वो भी परेशान होते हैं। मैं सोचता है कि मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ कर, तो लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मा जो होती है वो भगवान से वंचित कराने की भी तो निमित्त बन सकती है ना, फिर हाँ उसके ऊपर भी बोझ चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समझने लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो फिर उनके अंदर भी अभिमान भी आ जाता है कि मैं भी, जो मैंने इनको गाइडलाइन दिया, जो मैंने इनको विधि बताई, वो देखा इनका पुरुषार्थ कैसा, तो अभिमान भी आ जाता है, फिर उसका पुरुषार्थ डाउन हो जाता है। अगर देखा जाए जो भी उनके अंदर ज्ञान है तो पहले तो था नहीं, पहले होता तो पहले ही प्रसिद्ध हो जाता, वो तो बाबा के बनने के बाद ही हुआ ना। तो दी हुई चीज किसी दूसरे की अपना समझना भी तो क्या है, दोष है उनके अंदर। तो जैसे सूरज भाई भी कईयों को विधि बताते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं मैं तो बस बाबा की याद में रहता हूँ, बता देता हूँ, और कई लोग सक्सेस हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर यह भावना है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। लेकिन इस कारण उनको दुआएं भी कितने मिलते और कितने आगे बढ़े, क्योंकि जब हमारे अंदर यह भावना रहती कि मैं निमित्त हूँ और सबको ज्यादा से ज्यादा बाबा के प्रति जोड़ने का जो पुरुषार्थ करते हैं वही सच्चा पुरुषार्थ है, ना कि अपने में। नहीं तो व्यक्ति ज्यादातर यही होता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानते, जब मैं आपको इतना अच्छा गाइडलाइन देता हूँ पुरुषार्थ के बारे में, तो क्यों मानेगा वो आपकी पुरुषार्थ। कहीं ना कहीं वो अपनी मन मत की भी बातें तो सुनाता हूँ, अपने फायदा के लिए उसको यूज करना चाहता हूँ। कई बार तो ऐसे ही होता है कि मैंने आपको बताया, देखो सब अच्छा है तो मेरा एक काम कर देना, तो ऐसे भी होता है। तो बोलता मैं आपके काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो केवल उसको पूछने के लिए बस आया था। तो ऐसे ऐसे भी ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, तो इन सब का हमें अपने ध्यान रखना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का ध्यान रखना चाहिए, तभी जाके हम बाबा से, जो बाबा के प्रति हमारा मन में जो सच्ची लगन थी वो जागृत अवस्था में रहते, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं अटकने का चांसेस हो जाते हैं, और इसी के कारण हम भगवान के जो प्यार है उनसे वंचित हो जाते हैं और पुरुषार्थ के मार्ग से भटक जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये भी तो ज्ञान में चलता था, ये भी कहते देखो वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ऐसे ऐसे सब बातें जीवन में आती हैं, और फिर हम यज्ञ के डिस सर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। तो इन सब बातों का हम अगर हम ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हम पुरुषार्थ के मार्ग में आगे जा सकते हैं। जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं उसको सदा हमें स्मृति स्वरूप में ही रखना चाहिए, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, ये सब करना हमारा काम नहीं। हम पुरुषार्थ करने लगते हैं या ज्ञान में पहली पहली कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे भाई बहन एक साथ ज्ञान में आते हैं, और बहुत उमंग और उल्लास होता था जब हम भी पहले पहले ज्ञान में निकले थे, तो हमारे मोहल्ले से पूरे के पूरे 12 भाई बहन जाते थे, तो पूरे जितने भी लोग जाते थे तो सब बोलते थे देखो ये बीके लोग जा रहे हैं ओम शांति वाले, और जितने भी रास्ते में मिलते थे सब बोलते थे देखो ओम शांति वाले जा रहे हैं ओम शांति वाले, तो सभी जाते थे वो एक साथ। और नया नया ज्ञान होने के कारण डिस्कस बहुत होता है, क्योंकि नया होता किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो रात्रि में जाते थे हम लोग 8 बजे और आने तक 9 बज जाता था, तो 9 बजे आने के बाद हम लोगों का डिस्कस चलता था कि ऐसा कैसे होता है, कैसे बोलता है, ऐसा कैसे, तो क्योंकि शास्त्र कुछ पढ़े होते हैं, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होते, तो पूरा उसको अपोजिट लगता है। तो हर दिन हम लोगों का मीटिंग चल रहा था ऐसी उसी के ऊपर, माने ज्ञान चर्चा के, उसको माने उसको क्लियर करते थे ऐसा क्यों बोला आज, जबकि शास्त्रों में ना तो हमने आज तक सुना है ना, जैसे ज्यादातर स्वरव्यापी पर ज्यादा डिस्कस होता था। तो वैसे हम लोग 12-13 कुमार होते थे, तो दो दो तीन तीन घंटा डिस्कस चलता था हर दिन यही, उनमें हम भी थे तो सुनते ही बस थे, बाकी हम तो छोटे थे इसलिए ज्यादा हमें कोई दुनिया का नॉलेज भी नहीं था ना पढ़ाई के, तो हम केवल सुनते थे। तो सुनने के बाद में जो भी बात हमारी बुद्धि में याद रहती उसके बाद में मैं सोचता था, जब मैं अकेला रहता था, देखो आज हम मुरली सुन के आए तो इसमें बाबा ने क्या, और जो हम लोग दो ने डिस्कस किया इसमें तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, कौन सी बात सत्य है। तो हम निरपक्ष होकर न्याय करते थे कि वास्तव में सत्य क्या है। तो सत्य होने के कारण हमें रियलाइज होता था कि अगर ये सत्य है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये झूठ है तो ऐसा होना, क्योंकि दुनिया में भी ज्ञान है लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इनके जीवन में देखो कुछ ना कुछ तो है परिवर्तन। जैसे शिवानी बहन जी भी अपने अनुभव में सुनाती है कि जब उसे कहा गया कि भगवान पढ़ाते हैं तो तुरंत रिजेक्ट कर दी उसने बात को, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के वही लोगों के लिए आते हैं क्या। तो फिर उनके मन में एक बात क्लिक हुई, कुछ भी कहो इनका जीवन श्रेष्ठ है और लोगों से, तो उनका जीवन ही उनको प्रभावित किया। तो जब भी हम कोई चीज चर्चा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जब अकेले होते हैं तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए कितना परसेंट उसमें सत्य है। तो जितने भी हम सब थे बीके भाई बहन 12-13 और सब उम्र से हमारे से ज्यादा थे, हम छोटे थे, तो उसके कारण और सब ज्ञान में चले भी कहीं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल और धीरे धीरे सब ज्ञान छोड़ते गए। ऐसे नहीं कि ज्ञान की कमी थी, कोई पालना उसको विशेष मिलता था, ऐसे नहीं सब। और हम सेंटर में भी बहुत कम जाते थे, साल में केवल 2 ही बार, क्योंकि सेंटर 50 किलोमीटर दूर होता था। तो एक दिन शिवरात्रि और रक्षाबंधन, उसमें से मुश्किल से भी, क्योंकि घर से छुट्टी नहीं मिलता था इसीलिए। लेकिन मैं सोचता था कि जो सत्य है उसके ऊपर हमें साथ देना, उसके बारे में ही सोचना है, बाकी दुनिया क्या कहते उनसे क्या फर्क पड़ता है हमें। तो इस प्रकार हम कोई भी चीज को निरपक्ष होके कोई भी हमें कोई सुनाता है तो इससे हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा निर्णय ले सकते, वो भाई ऐसा बोलता है वो बहन ऐसा, तो आप उससे डिटैच हो जाओ और सत्य पर आधारित होकर उस चीज को देखो कि कितना परसेंट वो सत्य है, तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ प्रोग्रेस होता भी जाएगा। नहीं तो ज्यादातर लोग बोल रहे कहते, जैसे कि हमारी माता जी कहती थी, देखो वो भी ज्ञान छोड़ दिया, वो भी ज्ञान छोड़ दिया, वो भी ज्ञान, तुम भी छोड़ दे, ऐसे बोल रहे। तो बोलते मैं क्यों छोड़ू, उनको समझ नहीं आता तो उसने छोड़ा ना, फिर मुझे क्या पड़ी उससे, मुझे तो समझ आता है, मुझे हर बात में कोई भी बात में डाउट नहीं, तो मैं क्यों छोड़ू। तो हर दिन यही कमेंट होता था हमारे, देखो वो भी, वो तुम्हारे से बड़ा है, वो अच्छे घर का भी तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा है, ऐसे भी बोलते थे। तो मैं बोलूं पढ़े लिखे से इससे क्या मतलब है ना, ज्ञान तो अपनी अलग चीज है, क्योंकि साधना का मार्ग तो अलग होता है, इसमें पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है, बिना पढ़े भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बात होती है हमारे कर्म इंद्रिय, हमारे वो जो बताए हुए कर्म है उस पर कितना विश्वास है, तब जाके हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। अब जब हम आज भी घर में जाते हैं तो सभी जो भी हम मिलते एक दूसरे तो सब कहते हैं, जब हम देखते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा डिसीजन सबसे अच्छा है। तो डिसीजन अच्छा है लेकिन उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करना पड़ता है, उनकी जो भी बात कहते हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं और शिव बाबा की आज्ञा पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये भी एक चैलेंज होता है लाइफ में, मदद तो करता है ना वो तो, क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलते हैं ना वो, तो सोचने की बात ही नहीं कि वो मदद करता है कि नहीं, क्योंकि वो करेगा ना, क्योंकि उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं ना। अब भगवान मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, फिर तो इंसान टूट ही जाएगा। अगर उसके ही तो भरोसे व्यक्ति एक कदम रख के आगे बढ़ता है ब्राह्मण लाइफ में, अगर व्यक्ति के सहारे आगे बढ़े तो फिर तो वो गए, नैया डूब जाएगी उनकी बीच भर में। आज हम आपके काम कर रहे हैं, आपके कहने पर चल रहे हैं, तो आप हमें बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बोलोगे, और जिस दिन मैंने किसी कारण वो आपकी बात नहीं माने तो कहेगा भाई बहुत बेकार है, बहन बहुत बेकार है, भगाओ इसको यहाँ से। तो इंसान की मत पर चलने से हमारी यही स्थिति होती, इसलिए बाबा को, हाँ कभी अच्छा है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा की श्रीमत क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। बाबा कहीं ना कहीं हमें रखेगा अगर हम उनकी श्रीमत पर ईमानदारी से सच्चाई से सफाई से चलते। और इंसान तो स्वार्थी होता ही पक्का है ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इंसान आत्मा सब कुछ करता है, चाहे वो भीखे हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं उनके मन में स्वार्थ सबसे ज्यादा होता है, और स्वार्थ जैसे पूरा होता है वो आपसी किनारा कर लेता है। तो ऐसे जीवन बहुत बातें होती हैं। तो लेकिन बाबा ने हमें क्यों चुना और हमने इस लाइफ को क्यों चुना, अगर इस बात पर भी अगर हमारा अटेंशन है तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि दूसरे की ओर नहीं जाती। कोई क्या करता है, क्या फर्क पड़ता है ना। क्योंकि जब हम ज्ञान में आए थे तो ना तो इस ब्राह्मण परिवार को जानते थे, हम तो केवल बाबा और बाबा की मुरली सुन के ही आए थे, बाबा मुरली में क्या बताता है। तो जो जैसे जैसे हमें कुछ समझ आने लगा, हमें अच्छा आने लगा, वैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते गए। तो जब हम खुद का डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली होते हैं। कोई हमारी आलोचना करे, निंदा करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुनने की आदत हो जाती है, हमें पता है ना। फिर हम कईयों की जीवन स्टोरी पे पढ़ते हैं कि जो भी महान बने वो कैसे महान बने, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, है ना। स्वामी विवेकानंद की भी जीवन स्टोरी में देखो तो था तो बहुत अच्छे घर का, था तो बहुत अच्छे घर के, लेकिन जैसे उसके पिताजी का डेथ हुआ तो कैसे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। माने यहाँ तक उसकी स्थिति होगी कि उनके घर में कुछ खाने के लायक भी नहीं था, लेकिन उनके परिवार में कितने थे, भाई भी थे, बहन भी थी, माता भी थी, लेकिन उनके मन में प्रभु प्राप्ति की लालसा इतनी ज्यादा थी कि वो घर वालों को भी इग्नोर कर दिया और अपने पुरुषार्थ के मार्ग में निकल पड़े। फिर उसने गुरु रामकृष्ण परमहंस को से मिला तो उसने एक ही प्रश्न पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो उसने कहा हाँ, जैसे मैंने आपसे बातें कर रहा हूँ वैसे मैंने भगवान से बातें। तो बातें उनको प्रभावित किया और उसने उसकी सेवा में पूरा अपने जीवन अर्पित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित कर देता कि कुछ भी हो जाए कि मुझे इसी मार्ग पर चलना है, तो व्यक्ति कितना भी विरोध करे वो घबराता नहीं है और आखिरकार एक दिन वहां सबसे आध्यात्मिक क्रांतिकारी बन गया, है ना। पूरा देश उसको जानता है, बाकी जो उनके विरोध करने वाला को तो कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी बातें होती है हमें उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये है हमारे जीवन। बाबा अगर चाहे तो हमें कहीं भी उठा सकता है, बस हमें बाबा की श्रीमत पर ध्यान देना। कोई बात करता है नहीं करता है क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई हमारी आलोचना करता है, कोई किसी के कहने से कोई कुछ बन नहीं सकता। कोई कहेगा आप तो बहुत अच्छे योगी है, तुम्हारा योग तो लग नहीं जाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। और कोई कहे आप तो एक नंबर के खराब भोगी हो, तो भी नहीं हम बन जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं ना। तो कोई कुछ भी बोल सकता है हमें, कोई हमें हमारी उमंग उत्साह को डाउन भी कर सकता है। तो इसलिए हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति।